ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृता से चा, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात अपरिहार्य अर्थे, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में जिसमें कोई उपाय नहीं है, न तुम सोच तुम्हारा हसी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, इसमें कोई उपाय नहीं है, मृत्यु निश्चित है। लोग कहते हैं ना, भाई एक दिन तो मर नहीं है फिर क्यों चिंता करें, है ना, एक दिन तो मर नहीं है। तो वो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ये समझे हो कि भाई ये जो मनुष्य है वो हमेशा जीता है और मरता है, हालांकि जीवात्मा तो कभी न जन्म लेता है ना मरता है, लेकिन अगर तुम मान लो इसको जन्म लेने वाला और मरने वाला, तो इसमें भी शोक करने की जरूरत नहीं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं हम सुनेंगे। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। ये है जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, जब कंस अपनी मृत्यु के कारण देवकी को मारना चाहता है, जिस समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिस देवकी को तू रथ में बिठा करके ले जा रहा है उसी का ही आठवां बालक तेरी हत्या करेगा, तो ये सोच करके कि ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी दुश्मन है, क्योंकि ये ऐसे पुत्र को पैदा करेगी जो मेरी हत्या करेगा, तो तुरंत ही उसी विवाह के उस शुभ अवसर पर उसने घोड़ों की जो लगाम पकड़ी थी उसको छोड़ दिया, और क्या पकड़ दिया, देवकी के बाल पकड़ दिए, बाएं हाथ से बाल ऐसे, दाएं हाथ में तलवार ऐसे करने के लिए तुरंत ही सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसमें वसुदेव जी ने कई प्रकार से समझाया, ज्ञान दिया। वसुदेव जी कहते हैं मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते, कि मृत्यु जो है उसी समय पैदा होती है जब देह पैदा होता है, देह के साथ ही मृत्यु पैदा होती है, मृत्यु साथ साथ चलती है इस जीवन में, वो निश्चित हो चुकी है। कर्म के अनुसार हमारा जीवन निश्चित हो चुका है, कितनी श्वासें हमें लेनी है वो श्वासों की संख्या निश्चित है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, प्राणायाम के द्वारा श्वास की गति को धीमी करके अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, है ना, श्वासों के कारण। क्योंकि मृत्यु जो है श्वास की संख्या पर निर्भर करती है कि हमने कितनी श्वासें ली है। मतलब कहने का यह है कि मृत्यु निश्चित है, देह के साथ ही पैदा होती है। तो बात सही है, जो चीज बनी है वो नष्ट होगी, ये बात सही है। जो भगवान का धाम है वो सनातन है, वो ना बनता है और ना नष्ट होता है। जो जीवात्मा है वो पैदा नहीं होती और ना नष्ट होती है। जो चीज पैदा नहीं होती है वो नष्ट भी नहीं होती, है ना। जैसे भगवान है, अजन्मा है, कभी पैदा नहीं हुए, तो अविनाशी भी है। और ये जो देह है ये चूंकि पैदा हुआ है तो एक दिन जरूर ये नष्ट होगा, है ना। जिसमें जिस चीज में जन्म है तो उसमें विनाश भी है, ये बात सही है। कोई भी चीज हो, जैसे ये करतार बनाई गई है तो एक दिन ये भी नष्ट होगी। ये टेबल है, ये बनाई गई तो एक दिन नष्ट होगी, निश्चित। जो बनती है वो नष्ट होती है। लेकिन भगवान के धाम में, है ना, कोई भी शरीर ऐसे नहीं बनता जैसे कि भौतिक शरीर बनता है, ऐसे नहीं बनता। जो भौतिक शरीर है जब बनता है तो इसमें छह प्रकार के विकार होते हैं। इस भौतिक प्रकृति में हर चीज में छह प्रकार के विकार हैं। विकार मतलब परिवर्तन है। पहला विकार या परिवर्तन क्या है, जन्म है, पैदा होता है, है ना। जन्म के बाद वृद्धि, वृद्धि बढ़ता कि शरीर बड़ा होता है, है? और वृद्धि के बाद अस्तित्व कुछ समय तक स्थिर रहता है, यह भी एक परिवर्तन है। बढ़ना रुक जाता है, शरीर की बाढ़ रुक जाती है और एक तरह होता है, तो यह भी परिवर्तन है, है? उसको कहते हैं अस्तित्व, जन्म वृद्धि अस्तित्व। इसके बाद प्रजनन, इस शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है, है ना, यह भी एक परिवर्तन है, प्रजनन। और उसके बाद फिर क्षय होता है, यानी ये शरीर क्षीण होता है। और सबसे अंत में क्या होता है, विनाश, बिल्कुल नष्ट हो जाता है, है ना। तो ये निश्चित है, इस भौतिक प्रकृति में जितनी चीजें हैं उन सब में ये छह विकार हैं। जैसे वृक्ष ही मान लो, वृक्ष है ना, उसमें भी जन्म है, वृद्धि है, अस्तित्व है, प्रजनन, क्षय और विनाश सब में है। पशु है, पक्षी है, है? सब में जन्म होता है और वृद्धि होती है। अंडे हैं, पक्षियों के अंडे होते हैं, उनका भी जन्म होता है और वृद्धि होती है, अस्तित्व रहता है, प्रजनन होता है, क्षय और विनाश, है ना, ये है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस चीज का जन्म होता है, वृद्धि होती है, ये आपका जो शरीर है ये एक समय पैदा हुआ था, है? और फिर बड़ा हुआ। अगर पैदा हुआ और बड़ा हुआ ये शरीर, तो फिर एक समय कैसा हो जाएगा, बराबर रहेगा। और फिर एक समय ऐसा होगा इस शरीर से और शरीर पैदा होंगे, हैं? और एक समय ऐसा होगा कि ये शरीर घटने लगेगा, क्षीण होने लगेगा। और एक समय आएगा कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, निश्चित है। अगर जन्म और वृद्धि हुई है तो बाकी चार परिवर्तन भी होंगे, जरूर जरूर होंगे। ये नहीं हो सकता है कि शरीर है, जन्म हुआ और अभी वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है तो बढ़ते जाए कि बढ़ते जाए। अगर ऐसे बढ़ते जाए तो आप तो एक मील ऊंचे हो जाएंगे अगर बढ़ते जाओगे, जैसे अभी बढ़ते जा रहे हैं। अगर बढ़ते ही जाओगे तो बड़े होते जाओगे, एक मील ऊंचाई हो जाएगी आपकी, है ना। लेकिन नहीं है, एक स्थिति आती है जब वृद्धि रुक जाती है, शरीर नहीं बढ़ेगा। चाहे जितना भी दूध पी लो और चाहे जितना पनीर खा लो, है ना, लेकिन फिर शरीर बड़ा नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है ये, भौतिक प्रकृति, क्योंकि भौतिक प्रकृति ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, है? इसलिए भगवान बता रहे निश्चित इस प्रकृति में छह प्रकार के विकार हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुविते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर सबकी रचना करती है। चर और अचर, चर में क्या है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, जलचर, नभचर, ये सब चर है। और अचर में क्या है, पेड़ पौधे है, अचर है। तो चर अचर जितने भी प्राणी है, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति उनको उत्पन्न करती है। जब प्रकृति उत्पन्न करती है तो उनको फिर बड़ा भी करती है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है जो बड़ा कर रही है आपके शरीर को, और यही प्रकृति है जो आपके शरीर को फिर बराबर कर देती है, बड़ा नहीं होता, स्थिर। यही प्रकृति है जो आपके शरीर से और शरीर पैदा कर देती है, एक शरीर से ही दूसरे शरीर पैदा होते हैं, और इस तरह से ये जो जनसंख्या है ये नष्ट नहीं हो रही, जनसंख्या नष्ट नहीं हो रही, ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। और प्रकृति के द्वारा ही ये शरीर फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, घटने लगता है, चाहे कितना भी प्रयास करो लेकिन क्षय होगा। कितने आजकल वैज्ञानिक लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि बुढ़ापा ना आए, लेकिन निश्चित बुढ़ापा आता इस शरीर में, है ना। और एक समय ऐसा भी होता है कि फिर ये शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर छोड़ना पड़ता है ना। तो वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये शरीर नष्ट ना हो, लेकिन शरीर नष्ट होता है निश्चित। फिर भी वैज्ञानिक लोग आगे के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि आगे हम ऐसा उपाय खोज देंगे कि मृत्यु नहीं होगी, मौत नहीं होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कैसा है, जैसे कोई सड़क में भिखारी, सड़क का भिखारी आपको पोस्ट डेटेड चेक देता है, 1 लाख का चेक ले लो मुझसे, मुझे ये मकान खरीदना है, 1 लाख का चेक ले लो, पोस्ट डेटेड चेक देता है, है? और सड़क में घूम रहा है भिखारी, उसकी कोई बात मानी जाएगी? कोई बात विश्वास नहीं करेगा, उसके चेक को कोई नहीं लेगा, है ना। उसी प्रकार से ये वैज्ञानिक लोग ये जो है दावा कर रहे हैं कि आगे चल करके मौत को रोक देंगे, मृत्यु नहीं होगी किसी की, है? लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते। जब आप कुछ बना नहीं सकते हैं तो आप जो है कुछ मिटा भी नहीं सकते हैं, जो नियम है प्रकृति के, प्रकृति के द्वारा जब कोई चीज मिट रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। प्रकृति के द्वारा जो चीज बन रही है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता। अब देखिए जनसंख्या को भी रोकने का कितना प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ रही है प्रकृति के द्वारा। आप सोचिए जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ना कि जनसंख्या ना बढ़े, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही, क्यों? प्रकृति, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो इस तरह से जो है जब भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, अगर आपने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, तो इसमें फिर अपना समय खराब ना करो, अपना समय खराब ना करो इस चक्कर में कि भाई हम मौत को रोकेंगे आगे चल करके। ये महामूर्खता, भगवद गीता के वाक्य हमेशा सच रहे, हमेशा सच है और हमेशा सच रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। भगवान कृष्ण का जो वचन है इसको कोई बदल नहीं सकता है ना। इसलिए और कुछ सोचना नहीं चाहिए इस विषय में। भगवान कह रहे हैं तस्मात अपरिहार्य अर्थ न तुम सोच तुम्हारा हसी। इसलिए इस विषय में कोई उपाय नहीं है। जब भगवान ने कह दिया कोई उपाय नहीं है और फिर भी आदमी अपना दिमाग खराब कर रहा है कि भाई हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं, हम मौत को रोक सकते हैं, है ना, तो क्या है ये पागलपन, बेवकूफी है, महा बेवकूफ। इसलिए प्रभुपाद जी संकोच नहीं करते हैं गधा शब्द का प्रयोग करने में। गधे हैं, दिमाग नहीं जरा भी है, कुछ विषय में जरा भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने कह दिया तो स्वीकार कर लो, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना दिमाग लगा उतना दिमाग खराब होगा बस। हाँ, जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो उपाय है, उसे छूटो। तो जन्म से भी छूटोगे, मरण से भी छूटोगे, लेकिन जन्म से नहीं छूटे, जन्म लिया है तो मरण भी निश्चित है। अगर छूटोगे तो दोनों से छूटोगे, लेकिन आप एक से तो छूटना नहीं चाहते और एक से छूटना चाहते, ये कैसे हो सकता है? आप जन्म से नहीं छूटना चाहते लेकिन मरण से छूटना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? जन्म हुआ है तो मरण भी निश्चित है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी इतनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की, लेकिन उन्होंने भी कह दिया हिरण्यकश्यप को कि जब मैं भी जन्म मरण से मुक्त नहीं हूं तो तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं जन्म मरण से, है ना। फिर भी हिरण्यकश्यप मूर्ख था और उसने सोचा कि ब्रह्मा जी को मूर्ख बना करके मैं शायद मरण से छूट जाऊंगा। ये शरीर भौतिक है, इस शरीर का जन्म हुआ और शरीर बड़ा हुआ, लेकिन ये शरीर नष्ट ना हो ऐसी बात जो है ना वो सोच रहा है और उसके लिए तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है। और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि संभव नहीं है, असंभव है, कुछ और वरदान मांगो, तो उसने घुमा फिरा करके ब्रह्मा जी को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तो उसने क्या कहा कि मैं जमीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, पानी में ना मरूं, है ना, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, है? और भी ब्रह्मा जी से कहा आपकी सृष्टि में कोई भी जीव मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने जीव हैं उनमें से कोई भी उन्हें ना मार सके। ये सब वरदान होने के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई, नरसिंह भगवान ने उसे मार डाला। तो मतलब कहने का यह है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। शरीर अगर पैदा हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। हाँ, ध्रुव महाराज की बात अलग है। ध्रुव महाराज जो है वो उसी शरीर से ही वो ध्रुव लोक में गए, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो विमान पर चढ़े ध्रुव महाराज, है ना। तो ये संभव है। ऐसे और भी कई भक्तों के उदाहरण हैं जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, अपने उसी शरीर से ही वैकुंठ में चले गए। और आप जानते किसी का उदाहरण? तुकाराम महाराज, मीराबाई भगवान के श्री विग्रह में समा गई, संत तुकाराम के लिए वैकुंठ से विमान आया, उसी शरीर से ही वैकुंठ में चले गए, है ना। और भी हैं, रसिकानंद प्रभु, वो क्षीरचूरा गोपीनाथ जो रेमणा में मंदिर है वहां पर कीर्तन कराया और उनके शिष्य लोग कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन के बीच में ही वो गोपीनाथ जी के शरीर के अंदर चले गए रसिकानंद प्रभु। और जितने भी उनके शिष्य लोग थे जो कीर्तन कर रहे थे, अचानक देखा कि अपने गुरुदेव जो है भगवान के स्त्री विग्रह में समा गए, तो उन्होंने भी अपना मृदंग भी छोड़ दिया, गिरा दिया, जो मृदंग बजा रहे थे वो भी गिरा दिया और अपना शरीर भी गिरा दिया वही मंदिर में। कीर्तन करते करते उनके शिष्यों ने भी मृदंग भी गिरा दिए और अपने शरीर भी गिरा दिए। मृदंग और उनका शरीर एक साथ गिरे मंदिर में ही, तो वो बात अलग है। लेकिन सामान्य रूप में सिद्धांत यही है कि जब शरीर पैदा हुआ और बड़ा हुआ है तो एक दिन ये शरीर जरूर नष्ट होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। अब ये है प्रभुपाद जी क्यों ये बात बता रहे हैं, ताकि हमें कोई प्रोत्साहन ना मिले इस प्रकार का कि ठीक है अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है तो जिसको मर्जी हो मार दो है? कोई व्यक्ति ये ना सोचे अरे गीता में तो ये कहा है अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, मारना नहीं चाहते, तो भगवान कहते हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है तो जिस जो भी जिस जब भी आपकी मर्जी हो जैसी मर्जी हो किसी को भी मार दो, ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस बात से समर्थन नहीं होता है कि वृथा हत्या वध तथा युद्ध करें, व्यर्थ में हम किसी के साथ युद्ध करने लगे, ये नहीं है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तो इससे युद्ध का समर्थन नहीं भगवान कर रहे हैं, किसी तुम्हें युद्ध करना चाहिए बल्कि इससे शोक नहीं करना चाहिए, ये कहा। इस श्लोक में भगवान ये नहीं कहा कि भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है इसलिए तुम युद्ध करो, नहीं, भगवान कहते हैं इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसमें आप रोक नहीं सकते किसी को मरने से, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। यहां पर युद्ध का समर्थन नहीं किया भगवान ने, या किसी को मारने का समर्थन नहीं किया, किसी को मारो उनको। और किसी श्लोक में भगवान ने कहा इसलिए तुम युद्ध करो, तस्मात युद्ध सुभारत है, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। लेकिन यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा कि इसलिए तुम युद्ध करो, क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है इसलिए युद्ध करो, इसलिए इनको मार दो उनको मार दो। अगर शास्त्र का कुछ तोल मरोल करके अर्थ निकालता है तो प्रभुपाद जी उसको रोकने के लिए सावधान कर रहे हैं। यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा है कि हे अर्जुन इसलिए तुम युद्ध करो। भगवद गीता में तो स्पष्ट है कि हिंसा का समर्थन कर रहे हैं भगवान, हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कैसी हिंसा? हिंसा को रोकने के लिए हिंसा, अहिंसा की स्थापना करने के लिए भी हिंसा की आवश्यकता है, ये है। लेकिन बहुत से ऐसे जो तथाकथित विद्वान हैं वो भगवद गीता से अहिंसा का समर्थन करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि ये वास्तव में हिंसा नहीं हुई, वास्तव में युद्ध नहीं हुआ, ये तो एक काल्पनिक घटना है, ये कोई वास्तविक घटना नहीं है, कोई वास्तविक ना तो कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति है और ना अर्जुन नाम के कोई वास्तविक व्यक्ति है, ये तो अपना शरीर ही कुरुक्षेत्र है, पांच इंद्रियां ही पांच पांडव हैं, अर्जुन ही मन है और आत्मा ही कृष्ण है, और कौरव आसुरी वृत्तियां कौरव है। जो इसमें युद्ध की बात कही गई कि तुम युद्ध करो तो वो आसुरी वृत्तियों से तुम युद्ध करो, यही कहा गया, अपने अंदर ही आपके मन में ही जो आसुरी वृत्तियां हैं उनसे युद्ध करो, और कोई पांडव कौरव अर्जुन कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति नहीं है और ना कुरुक्षेत्र नाम की अलग से कोई युद्ध भूमि है। तो इस तरह से जो है जो लोग गीता की व्याख्या करते हैं वे बहुत बड़े अपराधी होते हैं, वे भगवान के बहुत बड़े अपराधी। क्यों? क्योंकि वो यहां तक उनकी हिम्मत हो गई कहने की कि अर्जुन और कृष्ण कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, इतनी हिम्मत। अगर जैसे आप यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मैं कह दूं आप वास्तव में बैठे नहीं यहाँ पर और ना आप हो, ये तो एक कल्पना है। अगर मैं कहूं कि आप लोग जो यहाँ पर बैठे हो ये तो एक कल्पना है, आप लोग थोड़ी यहाँ पर बैठे हो, आप लोग थोड़ी हो, वास्तव में आप लोग वास्तविक व्यक्ति नहीं हो, आप लोग तो काल्पनिक हो। तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसे ही सोचो कि भगवान को कितना बुरा लगता होगा जब कोई व्यक्ति कहे कि कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति वास्तव में हुए नहीं, अर्जुन नाम के कोई व्यक्ति हुए नहीं, कुरुक्षेत्र नाम को कोई स्थान है नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखना है तुमको कुरुक्षेत्र, मैं दिखा देता हूं तुमको, कुरुक्षेत्र की भूमि है, अभी भी है, जहां पर 5,000 साल पहले युद्ध हुआ था। इतना आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, खुद अंधे बन रहे हैं और दूसरों को अंधा बना रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं और भगवद गीता की व्याख्या कर रहे हैं। कितने अपराधी हैं, कितने दुष्ट हैं कि भगवद गीता की व्याख्या कर रहे हैं और बड़े महात्मा भी बने हुए हैं। कोई व्यक्ति जो है महात्मा बनने के लिए जो है भगवद गीता की नई व्याख्या करता है और लोग कहते हैं मैं तो बड़े महात्मा है, लेकिन वो भगवद गीता के अनुसार महात्मा नहीं है। भगवद गीता के अनुसार तो क्या है, दुरात्मा, दुष्ट है, वो महात्मा नहीं है, क्योंकि वो भगवान का सरासर अपराध कर रहे हैं और भगवान को जो है सरासर नकार रहे हैं। भगवान ने लीला करी इस पृथ्वी पर, कितनी भगवान की लीला सुंदर है, कितनी दिव्य है, कितनी मधुर है, उसमें सब प्रकार के रस हैं, वीर रस है और भयानक रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है, शांत रस है, दास रस है, इतने सब रस भगवान की लीला में है। और ये दुष्ट कहते हैं कि कोई कृष्ण नाम में कोई व्यक्ति नहीं हुए। कितने ऋषि मुनि जो है शंकर, ब्रह्मा, नारद जैसे बड़े बड़े आचार्य हैं, उन भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और एक जो है तथाकथित महात्मा जी ये बताते हैं कि कोई लीला वास्तविक नहीं है, ये कृष्ण का नाम या कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, ये सब काल्पनिक है, कल्पना बता रहे। तो ये बहुत अपराध है, तो हमें इस अपराध से बचना चाहिए। और अगर भगवान हिंसा का समर्थन करें तो वो ही कल्याणकारी है। अगर भगवान जो है कहीं पर हिंसा का समर्थन करते हैं तो वही उसी में कल्याण है सबका, और जहां पर भगवान प्रेम का समर्थन करते हैं वहां पर उसी में ही सबका कल्याण है। भगवान जो कुछ भी कहते हैं, भगवान जो कुछ भी करते हैं, उसी में ही सबका कल्याण है, सबका कल्याण है, एक का नहीं सभी का कल्याण है। जैसे कि वृक्ष की जड़ में अगर पानी डाला जाए तो पूरे वृक्ष का फायदा होता है, ये नहीं होता है कि भाई एक शाखा में पानी जाएगा और दूसरी शाखा में पानी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पूरे वृक्ष में पानी जाता है। उसी प्रकार से भगवान के जितने भी कार्य हैं वो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। तो इसलिए युद्ध तो अपरिहार्य है, हिंसा अपरिहार्य है, अगर समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, जरूरी है, जरूरी है। कुछ लोग नियम को तोड़ेंगे और उनको दंड देना जरूरी है। क्यों? जो व्यक्ति नियम तोड़ता है उसको दंड देना जरूरी है, क्यों? ताकि सिद्धांत की स्थापना हो सके और हर व्यक्ति समझ सके कि नियम को तोड़ने में ये दंड मिलता है और दूसरा व्यक्ति नियम नहीं तोड़ेगा। अगर मान ली इन्होंने कुछ नियम तोड़ दिया है, इनको क्षमा कर दिया गया, तो ये भी तोड़ेंगे, ये भी तोड़ेंगे। और इनसे हम कहेंगे आपने नियम क्यों तोड़ा, तो ये कहेंगे भाई इन्होंने नियम तोड़ा। अगर हम इनको दंड देना चाहें तो ये कहेंगे इनको दंड दीजिए, इन्होंने भी नियम तोड़ा है। तो इसलिए सिद्धांत की स्थापना करने के लिए कि दूसरा कोई व्यक्ति नियम ना तोड़े है? नियम तोड़ने वाले को दंड दिया जाएगा, दंड जरूरी है। युद्ध जरूरी है, हिंसा जरूरी है, कोई व्यक्ति अगर घोर अपराध करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है, जिससे कि सब लोग समझ सकें कि यह अपराध ना करें, बहुत डर जाए। ये जरूरी है ना, नियम की स्थापना करने के लिए ये जरूरी है कि जो नियम तोड़ता है उसको दंड दिया जाए, जरूरी है। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि तुम को जो है ये समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो युद्ध है ये तो करना पड़ेगा, और अब युद्ध में अगर इनकी जाने जा रही हैं, अगर ये मारे जा रहे हैं तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, और इनकी मृत्यु अगर अगर आज हो रही है तो भी एक ना एक दिन तो होनी ही है मृत्यु, इनकी मृत्यु हो रही है, इसमें कोई उपाय तो नहीं है कि आप बचा सको। फिर भी 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि पहले से ही मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं, भैया वेते निहिता पूर्व में निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचन, मेरे द्वारा ये पहले से मारे जा चुके हैं और हे सभ्यसाची तू केवल निमित्त मात्र बन, निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट। भगवान कहते अर्जुन से कि तुम केवल मेरे इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, निमित्त बन जाओ, तुम नहीं मार रहे हो, मैं मार रहा हूं, तो मृत्यु निश्चित है। भगवान पहले से ही इन सबको मार चुके हैं। अर्जुन ने जब देखना चाहा भगवान का विराट रूप तो भगवान ने दिखलाया, और अर्जुन ने देखा भी, क्या देखा, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यपि योद्धवीरान, भगवान कह रहे हैं।